आवाजों की एक आवाज रेख्ता पॉडकास्ट।
वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। चल दिए सुए हरम कुए बुता से मोमिन, जब दिया रंज बुतों ने तो खुदा याद आया। हाजरीन आदाब, रेख्ता पॉडकास्ट के आज के इस एपिसोड में आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, मोमिन खां मोमिन उर्दू के उन चंद बाकमाल शायरों में से एक हैं जिनकी बदौलत उर्दू गजल के नाम को चार चांद लगे। मोमिन ने इस रिवायत को ऐसे शिखर पर पहुंचाया और ऐसे उस्तादाना जौहर दिखाए कि गालिब जैसा खुद नगर शायर उनके एक शेर पर अपना दीवान कुर्बान करने को तैयार हो गया। वो कौन सा शेर था और मोमिन से जुड़े और भी बहुत सी कहानियां आपको बताएंगे जाने माने शायर फरत एहसास साहब। आज के इस एपिसोड में जिसका उन्वान है, तुम्हें याद हो कि ना याद हो।
वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। नाजरीन, आपको फरत एहसास का सलाम। आज हम एक ऐसे शायर के बारे में बातचीत करेंगे जो मशहूर तो हैं लेकिन हम उनसे इतना ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं जितना कि गालिब से हैं या मीर से हैं। तो ये दो कुछ शेर सुनिए आप पहले, तो शायद आपका ज़हन उस तरफ जाए। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी वादा निभा का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। और इस तरह के शेर हैं कि तुम हमारे किसी तरह न हुए, तुम हमारे किसी तरह न हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। तो ये दो तीन शेर मोमिन खां मोमिन के सिग्नेचर शेर हैं। अब मसला ये है कि हम लोगों ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है, तो सुनने पे सारा जोर है। मोमिन हमारे बड़े अलबेले शायरों में हैं। 19वीं सदी में दिल्ली में जो तीन चार शायर थे उनमें बहुत अहम और बहुत रोशन नाम मोमिन का है। एक तो दोस्त थे गालिब, मिर्ज़ा गालिब के। लेकिन मसला ये हुआ है ना कि हम सारा जो 19वीं सदी की शायरी का जिक्र जब भी होता है तो घूम फिर के गालिब के ऊपर आ जाती है सारी बात। तो गालिब जो है वो खा गया बहुत से शायरों को और हमने उनको ये मौका भी दिया कि वो दूसरों को हज़म कर जाएं। लेकिन गालिब बड़ी दोस्ती थी मोमिन से। वो मोमिन के इंतकाल पे गालिब ने जो अपने ख़त में किसी को लिखा है कि 14-15 साल की उम्र से हम दोस्त थे और मोमिन का जाना मेरे अंदर के एक हिस्से का मरना भी है, इस तरह के जज्बात गालिब ने ज़ाहिर किए। और ये जो शेर अभी मैंने आपको सुनाया, तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता, इसके बारे में बहुत मशहूर कौल है गालिब का। उन्होंने कहा था कि ये इस शेर पर मैं अपना सारा दीवान दे सकता हूँ। तो ये सूरत हाल थी, दोस्ती भी थी और बहुत गुर्बत थी। मोमिन की शायरी में एक बहुत पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस हैं, मोहब्बत के और इश्क के, बहुत ऐसे बहुत ही हल्के हल्के जो रेशे होते हैं जज्बों के और एहसासात के, वो हमें मोमिन के यहाँ मिलते हैं, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले एक बहुत अहम बात मोमिन के साथ ये है कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी बहुत कलरफुल थी। और शायद उस पूरे ज़माने में तीन ऐसे बहुत कम लोग रहे होंगे जिनके यहाँ इश्क और मैथमेटिक्स और म्यूज़िक, ये तीन बुनियादें थीं उनकी सारी ज़िंदगी। मैथमेटिक्स का मामला ये था कि मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट, जैसे हम लोग आज देखते हैं, उस ज़माने में एक जो उस ज़माने की मैथमेटिक्स थी उससे बहुत गहरी वाबस्तगी थी। और उसके जो ऑफ शूट्स हैं, जैसे शतरंज के बहुत बड़े माहिर थे मोमिन, और फिर ज्योतिष, इल्म-ए-नुजूम में उनकी इतनी ज़बरदस्त पहुँच थी और इतनी गहरी निगाह थी और इतने अच्छे प्रैक्टिशनर थे वो एस्ट्रोलॉजी के। कई वाक़े उनके मशहूर हैं उस ज़माने में। एक बार वो कोई साहब थे सखानंद, उनके साथ वो शतरंज खेल रहे थे, कहा उन्होंने कि मैं तुम्हें जब मात दूंगा, उस वक़्त दीवार पे एक छिपकली चल रही थी, उसने कहा कि इस छिपकली का जोड़ा जब आ जाएगा तो हम तुमको मात दे देंगे। तो इतनी देर में कोई कपड़ा बेचने वाला आया, तो वो उसने अपनी गठरी खोली, उसमें से एक छिपकली निकल के और दीवार पे चढ़ गई, तो उसके बाद उन्होंने उनको मात दे दी। तो ये वाकया अजीब था कि उन्होंने ऐसे एक साहब थे जिन्होंने नजूम के बारे में, उनका जो एस्ट्रोलॉजी है ज्योतिष के बारे में, कि एक साहब थे उनके घर में कुछ जेवर वर चोरी हो गए, तो वो उनके पास आए मोमिन खान के पास कि आप बताइए अपना ज्योतिष से कि हमारे जेवर कहाँ हैं। उनका चोरी नहीं हुए, तुम्हारे घर के अंदर ही हैं, देखो जाके। तो वो वहीं रूम में कहीं मिल गए। और सबसे अजीब जो वाकया है मोमिन की ज़िंदगी का, कि वो एक बार अपने मकान की छत पे खड़े हुए थे, मकान में कुछ रिनोवेशन हो रहा था, तो उसमें फिसल के नीचे गिर पड़े, वो छत से फर्श पर आ गए और हाथ पांव की हड्डियाँ टूट गईं, बेहोश हो गए, बहुत दिनों तक बीमार रहे। तो उसी दौरान उन्होंने कहा कि मेरा जो ज्योतिष है वो कहता है कि मैं 5 महीने में मर जाऊँगा। और एग्जैक्टली 5 महीने 5 दिन कहे थे उन्होंने, 5 महीने के बाद उनका इंतकाल हो गया। तो ये इस तरह का जो मामला था बहुत मिस्टीरियस था। इसी तरह से उनके कुछ वाक़यात ऐसे हैं कि शेफ्ता जो उनके साथ के थे और बहुत अहम शायर थे उस ज़माने में, उन्होंने एक बार कहा कि मोमिन के इंतकाल के बाद उनके ख्वाब में मोमिन खां आए और उन्होंने कहा कि मेरे घर की हालत अच्छी नहीं है बीवी की, तो आप उनकी कुछ मदद कर दें। तो शेफ्ता ने अगले दिन जाके पूछा तो वो सही था। तो फिर उन्होंने कुछ पैसे वैसे भिजवाए उनके यहाँ और खाना वाना का इंतजाम किया। और अहम जो सबसे ज़्यादा अहम बात है, मोमिन ने 6 इश्क किए और उन्होंने मसनवियाँ लिखी हैं, 6 मसनवियाँ लिखी हैं, 6 इश्क बयान किए हैं अपने। और कहीं जा रहे थे टहलते हुए तो कोई किसी खिड़की से उनको कोई इशारा हुआ तो वहाँ पहुँच गए, तो वहाँ पे हो गया था, सिलसिला हो गया उनका। फिर वहाँ एक दिन कोई साहब आए तो उन्होंने कहा कि एक खातून है, वो बीमार हैं, वो कलकत्ता से आई हुई हैं, तो आप उनके नब्ज़ देख लें। तो मोमिन खान ने कहा जी हाँ ठीक है, देख लेता हूँ। तो वो खातून आई और उन्होंने उनकी नब्ज़ देखी तो वो ख़ुद बीमार हो गए उनके। तो वो उनकी शागिर्द हो गई, साहिब नाम था उनका, तखल्लुस मोमिन ने ही दिया। और वो अच्छी खासी शायरी करती थी, हमने अपनी किताब में तो ये उनकी गज़ल भी शामिल की है। तो ये इश्क जो थे उनके, वो बहुत पैशनेट इन्वॉल्वमेंट थे। और अब उसमें उस वक़्त चूँकि मुमकिन नहीं था कि वो घरों में, या मतलब पर्दार ख़वातीन होती थी तो उससे घरों में या लोगों से इस तरह से रबता तो था नहीं, तो वो जो पेशेवर औरतें होती थीं उस वक्त, तो उनसे ज़्यादा ताल्लुकात रहे उनके। लेकिन उसमें भी उनके यहाँ बहुत जज्बे की बहुत सच्चाई और बहुत गर्मी और तपाक महसूस होता है। तो इश्किया शायरी जो थी उस ज़माने की, उसमें उन्होंने एक अपने तजुर्बे का, एक फेल्ट एक्सपीरियंस का एलिमेंट शामिल किया। और दूसरी बहुत ज़रूरी जो ख़ास बात थी मोमिन के यहाँ, कि उनका इश्क जो है वो रोमांटिक, उस तरह का प्लेटोनिक इश्क नहीं है। उस वक्त तक ये सारी बातें अक्सर ख्याली बातें होती थी, क्योंकि लोग जो हैं वो, उनका कोई ज़ाती तजर्बा होता नहीं था मोहब्बत का। या तो वो तवाफ़ों के बाद जाते थे तो वहाँ पर वो मोहब्बत का ताल्लुक तो होता नहीं था, और ज़ाहिर है कि बीवियों से उस तरह की मोहब्बत नहीं होती जिस तरह से महबूबों से होती है। तो लेकिन मोमिन के यहाँ जो माशूक है वो बहुत ज़िंदा और बहुत जीता जागता जिस्म रखने वाला माशूक है। तो ये पहली बार हम देखते हैं मीर मोमिन के यहाँ। अब दो तीन शेर इस तरह के मांगा करेंगे आपसे, दुआ हिजर यार की, आखिर को दुश्मनी है असर को दुआ के साथ। तो ये पुराना एक मजमून था कि हम आशिक जब दुआ मांगता है उसका उल्टा होता है, कि उसकी दुआ कभी कबूल नहीं होती, कि माशूक से मिलना चाहता है तो दुआ किए चला जा रहा है, दुआ का असर ही नहीं हो रहा था। वो उन्होंने इसको पलट दिया, कहा कि अब ना मिलने की दुआ करेंगे ताकि वो मिलना हो जाए। तो इस तरह से, और ये बहुत कमाल का शेर मोमिन के यहाँ, मैं भी कुछ खुश नहीं वफा करके, तुमने अच्छा किया निभा न की। और दूसरा तीसरा ये बहुत अच्छा शेर ये है, जहाँ भी उन्होंने पुराने मजमून को नया किया है, तो उलझा है पाँव यार का जुल्फ़े दराज में, उसके माशूक की लंबी जुल्फ़ें हैं, तो वो कह रहे हैं कि जुल्फ़ों में पाँव उलझ गया, तो लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। तो सयाद के मतलब जो पकड़ता है परिंदों को, तो वो जुल्फ जो है वो एक तरह का फंदा है, तो कह रहे हैं कि वो सबको फांसता था, आज खुद अपने जाल में खुद फंस गया। उलझा है पाँव यार का जुल्फ़ दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। मक्ती को उन्होंने बहुत खूबसूरती इस्तेमाल किया मीर मोमिन ने, मोमिन के मतलब मुसलमान। तो अब मुसलमान के जितने भी बाइनरी अपोजिशंस थे उनको सबको प्ले किया इन्होंने, कि बुतखाना, बुत और काबा और देर, मंदिर, मस्जिद, इन सब अपोजिशन बाइनरीज को उन्होंने प्ले किया। और उनका बड़ा मशहूर शेर सबने सुना होगा, शायद आपने भी सुना होगा, उम्र तो सारी कटी इश्क बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। तो ये तो मुहावरे के तौर भी इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कुछ बातें मोमिन खां मोमिन के बारे में सुनी, और हम चाहेंगे कि आप मोमिन के बारे में और पढ़ें। आपसे फिर मुलाकात होगी, खुदा हाफिज़।
आप सुन रहे थे रिख्ता पॉडकास्ट में आज का एपिसोड, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। सुनते रहने के लिए इस पॉडकास्ट को फॉलो जरूर करें। ज्यादा मालूमात के लिए विजिट करें www.rikhta.org।